शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, सन शोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करते हैं, बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। पहले बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करे, फिर बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं। तो हम कैसे बाबा का शो करते हैं? जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं उसके आधार पर हम चलते हैं, तो बाबा का शो करते हैं। ये किसके बच्चे हैं? तो बाबा का शो होता है, बाबा की प्रत्यक्षता होती है। तो हम अपनी चाल से, चलन से, व्यवहार से, बोल से, दृष्टि से, बहुत तरीके हैं बाबा का शो करने के। तो आज बाबा ने कहा है कि बाबा का शो कैसे करेंगे, जब बाप का पैगाम सबको देंगे। क्योंकि पहला कदम तो यही है ना, बाकी बाद में, पर पहला कदम यही है कि बाप का पैगाम सबको देना है। और क्या है उनका पैगाम, हर मुरली में वो भी सुनाते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, पवित्र बनो, योगी बनो। फिर बाबा कहते हैं अब घर चलना है, अब ये भी पैगाम देना है सबको, अभी घर चलना है, अब मौत सामने खड़ा है, तो ये संदेश सबको देना है। तो जब ये संदेश सबको मिले तब तुम बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, और फिर बाप तुम्हारी प्रत्यक्षता करते हैं। कैसे करते हैं बाप हमारी प्रत्यक्षता? महिमा निकलती है, ब्रह्मा कुमारियों की महिमा निकलती है ना, ये ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बाबा कहते हैं, कई बार बाबा ये भी कहते हैं, ये तो भी महिमा निकल रही है, लेकिन ये कराने वाला कौन है, वो अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, ये ब्रह्मा कुमारियां कर रही है, पर ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है। तो बाप को प्रत्यक्ष करना बहुत जरूरी है। तो कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? पहले तो संदेश दो कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे मिल सकता है। आज बाबा ने साफ कहा है, किसी की भी भक्ति करने से ऐसे भगवान नहीं मिलता है। कोई हनुमान की करे, कोई गणेश की करे, कोई किसकी करे, कोई किसकी करे, उससे भगवान नहीं मिलता है। भगवान तब मिले जब जब हम परमात्मा को प्रसन्न करें। परमात्मा को पहचानते ही नहीं है तो हम किसको प्रसन्न करते हैं? देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, नौरों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान किसमें प्रसन्न होंगे? वो अगर हमारी बुद्धि में आ जाए तो तब हम बाबा का शो कर सकेंगे। तो आज बाबा ने विशेष रूप से बाबा का कैसे शो करना है वो कहा है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 6/5/2025 है। मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो। ये सब बाबा कहते हैं, या ये करो तो बाबा का शो करेंगे। याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। पढ़ाई और सत्संगों में जाना, उसमें भी कितना अंतर है। भक्ति करना और पढ़ना, दोनों में भी कितना अंतर है। भक्ति करते हैं, भटकते रहते हैं, यहाँ सेवा वहाँ सेवा। पढ़ाई में तो केवल एक ही जगह पढ़ना होता है, इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई माना पढ़ाई, ऐसे नहीं कि अलग आज स्कूल में गए, आज स्कूल में गए, आज स्कूल में गए, एक ही स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं लौकिक पढ़ाई भी, तो हमारा भी टीचर एक ही है, हमें कोई यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे, टीचर बन के पढ़ा रहे हैं फिर सतगुरु बन के ले जाएंगे। प्रश्न है कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है, सभी को देना है, मना सभी, मना सभी सभी धर्म, धर्म की आत्माओं को भी ये पैगाम देना है, तो कौन सा पैगाम देना है? उत्तर अब घर चलना है, अब ये पैगाम देते जाओ, अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ऐसे ही किसको कहो पावन बनो तो कहेंगे कैसे बने, तो उसके लिए फिर युक्ति है मुझे याद करो, तो याद से शक्ति मिलेगी तो पावन बनेंगे। तो पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। अंडरलाइन है बाप का शो करना है, जो परिचय बाप ने हमें दिया है वो हमको औरों को देख करके उनको कहना है, अब उसको ही याद करो। बाप का शो करना तुम्हारा कर्तव्य है। कहा भी जाता है सन शोज फादर, गीत है मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में, ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा क्या कहते हैं बच्चे बाबा को, बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरोही जाएंगे। पहले तो रुद्रमाला में पिरोना है ना, फिर विष्णु की माला में पिरोना है, कि बाबा हम तो आपकी रुद्रमाला में पिरोए ही जाएंगे। ये गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं, जो भी दुनिया में सामग्री है जप तप पूजा पाठ ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग रावण राज्य, ज्ञान मार्ग माना राम राज्य, तो भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज पढ़ाई, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। उसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि हम क्या बनेंगे, भक्ति पढ़ाई नहीं है, बहुत अंतर है भक्ति में और पढ़ाई में। भक्ति पढ़ाई नहीं है, राजयोग सीखना ये पढ़ाई है। पढ़ाई तो एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है, भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई एक कंसंट्रेट एक में करते हैं, पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट्स हैं, बहुत है जो अपने को स्टूडेंट समझते ही नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ बाबा का ये समझते ही नहीं है। क्यों नहीं समझते, कैसे पता चलता नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। अब पढ़ेंगे तब तो समझेंगे ना, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ते ही नहीं है, क्लास में आते ही नहीं है, मुरली पढ़ते ही नहीं है, किसको बाबा का आप परिचय देते ही नहीं है, तो कैसे कहेंगे कि अपने को स्टूडेंट समझ रहे हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। न बाप को बाप समझते हैं, ये भी है, न शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं, मुझे शिव बाबा से ही सदगति मिलेगी यही नहीं समझते हैं, समझते यहाँ वहाँ कहाँ भी जाएंगे कहीं से कुछ मिल जाएगा। ऐसे भी है कि बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं, राजधानी स्थापन हो रही है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, बाप को बुलाते ही इसलिए बुलाते हैं, तो क्या कहते हैं हे पतित पावन आओ, इस प्रकार से बुलाते हैं। अब बाप कहते हैं पावन बनो, बाप को याद करो, हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वैशालय है, पहले भारत ही शिवालय था, अभी दोनों ताज नहीं है। भारत में दोनों ही ताज नहीं है, न पवित्रता का न राजाई का। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि अब बाप पतित पावन कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है, बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्तमाला भी तो थोड़ों की है ना, भक्तमाला कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। धना भगत की भी कहानी आती है, जैसे मीराबाई की है, वो कृष्ण की भक्ति करती थी, वो मूर्ति को ही अपना अपना पति मानती थी, मूर्ति साथ में होती थी। इसी प्रकार धना भगत भी थे, उसको किसी ने पत्थर दिया तो कहा बस इसमें तुमको भगवान मिलेगा, पत्थर ही दिया, और वो सचमुच पत्थर में भी वो भगवान देखने लगा और उसको उस पत्थर से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। बहुत उसका वर्णन आता है। तो धना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है, इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे, तो वो भक्तों का बहुत नाम है, बहुत मान है, तो बाबा के बच्चों में भी तो सब तो आकर के पढ़ेंगे नहीं। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं, कहते भी हैं बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। कल्प पहले भी आए थे, अब भी आए हैं। अभी बाप कहते हैं, अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को ले जाने के लिए। क्यों आए हैं बाप, लिस्ट बन सकती है, बाप क्यों आए हैं तुम बच्चों को ले जाने के लिए। समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए बुलाते हो कि आ करके पावन बनाओ। अब बाप कहते मुझे याद करो, कहो कहा आपने पावन बनाओ आकर, तो मैं आया हूँ, अब बनो पावन, उसके लिए मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ में भी ले जाएंगे, तो बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन भी नहीं कहेंगे, न वो पिता है, न वो टीचर है, न वो गुरु है। श्री कृष्ण पढ़ाएगा थोड़ी, वो तो राजकुमार है, राजकुमार थोड़ी पढ़ाएगा, और न वो गुरु है जो सबकी सदगति करे, न वो बाप है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो ये किसको भी पता नहीं है कि बाप किसको कहा जाता है, और फिर वो ज्ञान कैसे देते। चलो वो बाप है समझ भी ले, परमात्मा एक है, वो पिता है, फिर वो टीचर भी है, वो पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, बाबा कहते वो भी नहीं जानते, फिर वो ज्ञान कैसे देते हैं ये तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं, नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते हैं। अब ये भी बात है, कई आते थे कि हमको आपके गुरु का दर्शन कराओ, हम आपके गुरु से मिलना चाहते हैं, तो बाबा उनको साफ मना कर देते, यहाँ कोई गुरु है ही नहीं, यहाँ तो बाप और बच्चे हैं। तो बाप और बच्चे तो, परंतु नहीं नहीं कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे तो बाप क्या कहेंगे, नयों से बाबा नहीं मिलते थे तो बाप क्या कहेंगे, सन शोज फादर। बच्चे पहले बाप का परिचय दे, दोनों बाप का परिचय दे, अगर ब्रह्मा बाबा से भी मिलना है चलो, तो भी वो बाप है ना, तो उसका भी तो परिचय होना चाहिए, नहीं तो समझेंगे गुरु है उनसे हम मिल रहे हैं। तो बाप कहेंगे सन शोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, पहले परिचय देंगे सबको। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है, बाबा अपने बच्चों से ही मिलते हैं। बल इतना समय बाबा नई नई से मिलते रहते हैं, मिलते थे बाबा, ऐसे नहीं कि नहीं मिलते थे, तो नयों से मिलते हैं बाबा कहते इतने समय से। अब ये ड्रामा में था, ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना है। बाबा जब दिल्ली में गए थे, वहां पर मेजर भाई थे, बहुत प्यार से उसने बाबा को दिल्ली में निमंत्रण दिया, अपने घर में निमंत्रण दिया। उस समय को ऐसे सेंटर्स भी इतने नहीं थे, तो अपने घर, उनका घर कोठी बहुत बड़ी थी, वहां निमंत्रण दिया। तो बाबा उनके घर में रहे और वहीं क्लास मुरली चलाते थे। तो वो मेजर इतनी सेवा करता था, सारे मिलिट्री वालों को ले आता था, घर तो उसका ही अपना था ना, मिलिट्री वालों को ले आता था और बाबा उनको संदेश देते थे, बाबा उनको ज्ञान देते थे। तो उस समय तो बाबा सबसे मिलते थे, नए नए से भी मिलते थे। तो वही बाबा कहते, वो ड्रामा में था। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है ना, जो उनको प्रोफेशन मिला है तो उनको तो धंधा करना ही है। अभी भी देखो सिक्योरिटी विंग वाले आए थे, कितनी उनकी अच्छी सेवा हो गई, जो कैसे सिक्योरिटी वालों से हमारे मिनिस्टर भी मिले और उनके साथ खास परिचय भी कराया। तो बाबा कहते उनका भी तो उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है, प्रोफेशन ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। इसलिए सिक्योरिटी विंग तो बहुत ही जरूरी है, देश की रक्षा ये करते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे, सिर्फ बाप को याद करना है। तो मिलिट्री वालों को यही कहा जाता है कि अब परमात्मा को याद करो, जब भी गोली चला, बाबा यही कहते थे, जब मिलिट्री वालों से बाबा मिलते थे, बाबा कहते थे ये जो आप कर रहे हो ये जरूर करो, क्योंकि देश की रक्षा का सवाल है। तो परंतु बाबा कहते थे जब भी आप गोली चलाओ दुश्मनों पर, तो बाबा को याद करके करो। फिर बाबा कहते देखो गीता में है, अर्जुन को यही कहा, हे अर्जुन तुम इनको मारो, हाँ मेरी याद में मारो, और अगर मेरी याद में तुम मर भी जाएंगे तो भी तुम स्वर्ग में आएंगे, लेकिन तुम्हारी विजय निश्चित है, इसीलिए तुम युद्ध करो। परंतु अगर मर भी गए, हाँ विजयी नहीं भी बने, मर भी गए युद्ध में, तो भी तुम स्वर्ग में आओगे। अब बाबा कहते हैं ये तो मिलिट्री वालों को भी कहते हैं, तुम स्वर्ग में जाओगे अगर तुम लड़ाई में मरोगे भी। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, गीता में है जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा न सके। ये तो चलो भले कहते हैं, क्योंकि अर्जुन को यही कहा, तो इस समय की बात है, संगम की बात है, जबकि बाबा कहते तुम माया से लड़ते हो, और अगर माया से लड़ते लड़ते अगर शरीर भी छोड़ दिया तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे, सत्युग में जरूर आएंगे, अगर विजयी बने तो राजा बनेंगे, ये गीता में भी है। तो लेकिन बाबा कहते ऐसे नहीं कि सभी को ऐसे स्वर्ग में जाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी स्वर्ग है कहाँ, अभी तो स्वर्ग स्थापन हो रहा है, स्वर्ग के ऊपर नहीं रखा है जो परमानेंट स्वर्ग है, और कोई मरेगा स्वर्ग में जाएगा। तो वही बाबा कहते हैं स्वर्ग, तो बाबा कहते वो परंतु ऐसे तो जा न सके, स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब तो जाएंगे ना, वो स्वर्ग स्थापन करे फिर तो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते, अभी तुम बच्चे पांच विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, और कोई ऐसे कह न सके, श्री कृष्ण भी ऐसे नहीं कह सकता अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो, ये शिव बाबा ही कह सकता है। सर्वशक्तिवान एक बाप के सिवाय ऐसे कोई कह न सके, ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकते हैं, ऑल माइटी एक ही बाप है, श्री श्री है, ऑल माइटी एक ही बाप है, वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। ये जो साधु संत आदि हैं, वो है शास्त्रों की अथॉरिटी, ऑल माइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी, भक्ति की अथॉरिटी भी नहीं कहेंगे, हाँ वो शास्त्र खूब पढ़ते हैं साधु सन्यासी, तो वो शास्त्रों की अथॉरिटी है, भक्ति की अथॉरिटी नहीं है। भक्ति की अथॉरिटी तो वो भक्ति मार्ग वाले जो भगत बनते हैं वो अथॉरिटी, वो तो परिवारों में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे साधु संतों को, वो शास्त्रों की अथॉरिटी है, उनका सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। अब भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी होनी है ये तो पता ही नहीं है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होंगे, भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, दर्शन करना है साक्षात्कार करना है तो भक्ति खूब करते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वो किसकी भक्ति से राजी होगा। अब ये भी प्रश्न है, भक्ति से भगवान मिलेगा लेकिन किसकी भक्ति से भगवान राजी होगा। ऐसे नहीं जिसकी भी भक्ति करो तो भगवान राजी होगा। चलो भक्ति किसी की भी की तो शिव बाबा उस जिसकी भक्ति की उसका साक्षात्कार कराएंगे ड्रामा अनुसार, लेकिन शिव बाबा तो राजी नहीं होगा ना, क्योंकि शिव बाबा की थोड़ी भक्ति की। तो बाबा कहते हैं परंतु वो किसकी भक्ति से राजी होगा, जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा। अभी मैं किसके आगे दूसरे की महिमा करूं तो वो व्यक्ति कैसे राजी होगा, उसकी महिमा करेंगे तब तो वो राजी होगा ना। तो शिव बाबा की महिमा करेंगे शिव बाबा के आगे तभी तो शिव बाबा राजी होगा। अब शिव बाबा के आगे औरों की महिमा करो तो शिव बाबा कैसे राजी होगा, अंडरस्टूड है। तो इसलिए शिव बाबा की भक्ति से ही शिव बाबा राजी होंगे। परंतु वो किसकी भक्ति से राजी होगा, जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। अच्छा तुम शंकर की भक्ति करो तो क्या शिव बाबा राजी होगा, अब बताओ। शिव शंकर को तो एक ही समझ लिया, पर अगर हम शंकर की भक्ति करें तो शिव बाबा राजी होगा। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा राजी कैसे होगा। अच्छा क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा। दीदार तो हो जाता है बाकी मिलता कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं, ऐसे नहीं स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। तो बाप कहते हैं मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, जो जिसकी भावना है जिसमें भावना है उस अनुसार उनकी भावना का भाड़ा देता हूँ, उनका साक्षात्कार कराता हूँ। तो भल साक्षात्कार कराता हूँ परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे, ये बहुत बड़ी बात है ना? मेरे से आके मिलेंगे नहीं ना, जो जिसकी भक्ति करते उसके अनुसार उनकी भावना का भाड़ा देता हूँ, पर मेरे से मिलने का रास्ता मैं खुद ही बताता हूँ। ये भगवान के ये गीता में आता है खास। तो बाबा कहते हैं परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे, नहीं तुम तो मेरे साथ मिलते हो क्योंकि शिव बाबा का परिचय तुमको मिला है। भगत भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, फिर क्या कहते हैं पता नहीं किस रूप में भगवान आकर मिले। वो एक चुटकुला भी सुनाते ना, एक माता रोटी पका रही थी, तो रोटी पका रही थी, अभी रोटी रखी थी कि घी चौपड़ना, अचानक एक कुत्ता गया और वो कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। तो कहती अरे क्या पता भगवान आ गया कुत्ते के रूप में, अरे भगवान भगवान थोड़ा रुको घी को ये रोटी को घी तो लगाऊं फिर भले ले जाओ, क्योंकि कहीं भगवान आ गया हो तो उस रूप में। तो इसलिए बाबा कहते हैं पता नहीं भगवान किस रूप में आकर के मिले, इसीलिए इसको कहा जाता है भगवान किस रूप में आकर मिले। ऐसे समझ लिया तो कुत्ते में भी आ जाएगा। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वो निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी आकर अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है, द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। अब बाबा कहते ये भी कोई बड़ाई नहीं है, इनकी क्या बड़ाई करेंगे, धर्म स्थापक आया और फिर उसके बाद उसकी धर्म की आत्माएं आती गई और धर्म की वृद्धि होती गई, और तो क्या बढ़ाई होगी उस धर्म पिता की भी। फिर वो आत्मा भी फिर पुनर्जन्म लेती, अपने धर्म की पालना करती। तो बाबा कहते इसमें कोई बढ़ाई की बात नहीं है, बढ़ाई किसकी भी नहीं है, कोई अन्य आत्मा की बढ़ाई नहीं है, एक परम आत्मा की बढ़ाई है। बढ़ाई किसी की भी नहीं है, ब्रह्मा की भी बढ़ाई है या नहीं है? हाँ, ब्रह्मा की बढ़ाई है या नहीं? बाबा कहते हैं ब्रह्मा की बढ़ाई भी तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं। बाबा कहते मतलब साधारण था, एक बिजनेसमैन था, क्या मेरी बढ़ाई होगी। चलो मान मिलता था बाबा को, क्योंकि बाबा दानी बहुत थे, इसीलिए उनका मान बहुत था समाज में, वो अलग बात है। लेकिन इतनी बढ़ाई जो हो वो तो एक भगवान की होती है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा की भी बढ़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं, नहीं तो ये धंधा करता था, बिजनेसमैन था, इनको भी थोड़ी पता था कि मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश कर समझाया है कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, वो भी संदेश पुत्रियों द्वारा पता चला, नहीं तो ब्रह्मा बाबा को समझ में नहीं आया ये कौन मेरे मुख से बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ पता चलता अभी, मैं बोल रही तो पता चलेगा ना मैं बोल रही हूँ, लेकिन हम बैठे हैं और कोई बोल रहा है, अभी कौन बोल रहा है और मैं भी सुन रहा हूँ। तो बाबा कहते बाबा को ही समझ में नहीं आया, परंतु जो संदेश पुत्रियां होती थी वो ध्यान में जाकर के जब आकर के बताती थी कि कैसे शिव बाबा की आप में प्रवेशता है। तो बाबा कहते हैं बाप ने प्रवेश कर समझाया है कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया, ब्रह्मा बाबा को दिखाया, क्या दिखाया शिव बाबा ने, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो तुम जो कुछ तेरा है अब मुझे समर्पित कर लो, और मेरा जो है ये स्वर्ग मैं तुमको ये स्वर्ग दूंगा। तो पहले विनाश का साक्षात्कार कराया, तो कहा ये सब खत्म होने वाला है और ये जो कुछ भी तेरा है अभी वो मेरे हवाले कर दो। तो फिर स्वर्ग दिखाया कि अब ये तुमको मेरा है जो वो तुमको मिलेगा, हाँ तुम्हारा सो मेरा, मेरा सो तुम्हारा। तो कैसे इनको दिखाया, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो हाँ तुमको ये स्वर्ग मिलेगा, तुम ऐसे स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करोगे, इसलिए अपना सब तन मन धन स्वाहा करो, तुम मेरे मददगार बनते हो, अपने तन मन धन से तो अपने तन मन धन से तो मेरे मददगार बनते हो, तो उनकी एवज में तुमको ये मिलेगा। ये ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया। तो बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, ये किसको भी पता नहीं है। बल कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, लेकिन कैसे कब क्या, बाबा कहते कुछ पता नहीं। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, नर्क का फाटक बंद हो स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है ये भी तुम जानते हो। नर्क का फाटक खोलते ना, वो जब क्रॉस करना होता है और ट्रेन की पटरियों से गुजरना होता है तो फाटक होता है, तो फाटक बंद होगा, अभी ट्रेन आने वाली है, फिर ट्रेन चली गई, फिर फाटक खुलता है, अभी क्रॉस करो। तो बाबा कहते स्वर्ग का भी फाटक है तो नर्क का भी फाटक है, तो स्वर्ग का फाटक कौन खोलता है, भगवान, और नर्क का फाटक कौन खोलता है, रावण। तो बाबा कहते हैं नर्क का फाटक बंद हो स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है ये भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नर्क का द्वार खुलता है। रावण राज्य शुरू हुआ अर्थात नर्क का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो, हाँ क्या युक्ति है, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए, इस जन्म के पाप तो बताने हैं, इस जन्म के पाप ही बताने हैं बाबा को, याद तो रहते हैं ना हरेक को, अपने अपने जीवन में इस जीवन में क्या पाप किए हैं वो सब याद है, तो याद तो रहते हैं ना क्या क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है, इसको भी अपने छोटेपन का पता है। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, बचपन में मैं क्या था, कैसे था, फिर कैसे क्या क्या मैंने किया, तो बाबा को भी सब पता है। कई बार बाबा मूल्यों में सुनाते हैं, तो इसको अपने छोटेपन का पता है ना। श्री कृष्ण का ही नाम है सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर, उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। क्यों श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, जो सच्चा अर्थ वो तो बाबा बताते हैं, कैसे माया ने दशा आत्मा को तो श्याम बन गई आत्मा, कोई कभी की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो फिर चित्र भी काला बना दिया, श्री कृष्ण के कितने काले काले चित्र, श्रीनाथ द्वारे में जो इतना काला चित्र है ना, तो चित्र भी काला बना दिया। फिर बाबा कहते हैं, रघुनाथ के मंदिर में भी देखेंगे वहां भी काला, फिर हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं, सारे काले चित्र। ये है ही पतित दुनिया, अभी तुम बच्चों को ओना है मना फिक्र है कि हम सांवरे से सुंदर बने, है ना सबको ये फिक्र, हम सांवरे से सुंदर बने मना पतित से पावन बने। उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो, तो बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे, जानते हैं बाप आए हैं ले जाने लिए। क्यों आए हैं बाप, ले जाने लिए, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे, ऐसे थोड़ी शरीरों सहित बाबा ले जाएगा, शरीरों को तो यहीं छोड़ना है, शरीर यहाँ छोड़ेंगे, शरीर सहित थोड़ी ले जाएंगे, पतित आत्माएं भी जा न सके, एक तो ले जाएंगे आत्माओं को और शरीरों को तो यहीं छोड़ना है, फिर पतित रूप में भी नहीं जा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं पतित रूप में भी आत्माएं नहीं जा सकती है, तो जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे, बिना पावन बनाए ले कैसे जाएंगे, तो कैसे पावन बन उसकी भी युक्ति बताएंगे। तो कहते हैं क्या युक्ति बताते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में तो है अंधश्रद्धा, शिव काशी कहते हैं फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, शिव काशी कहते ना, तो शिव ने गंगा लाई, फिर भागीरथ से गंगा निकली, शिव की जटाओं, फिर शंकर दिखाते उनकी जटाओं से गंगा को अपने वश में किया, बहुत तेज थी तो वश में किया, अपनी जटाओं में समाया, फिर वो कैसे भागीरथ ने उसको लिया और फिर भारत की ओर भेजा। तो फिर बाबा कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली, अब पानी माथे से कैसे निकलेगा, सोचो तो गंगा को अपने बालों में समा लिया, फिर वो कैसे वो मुख दिखाते, उस मुख से गंगा निकली, तो गंगा वो फिर जल बन के वही। तो बाबा कहते हैं अब पानी माथे से कैसे निकलेगा, भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या, जिसकी फिर जटाओं से गंगा निकल आएगी, शिव जी की जटाओं से, फिर भागी वापा भागीरथ वो पहाड़ों पर बैठा और वो भारत में लाया, जिसकी जटाओं से गंगा आएगी। पानी तो बरसता है, कैसे बरसता है पानी, बारिश कैसे आती है, तो बाबा कहते पानी तो बरसता है, सागर से खींचते हैं, बादल सागर से पानी खींचते हैं, तो सारी दुनिया से में पानी जाता है, नदियां तो सब तरफ है, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है वो भी पानी आता रहता है, बर्फ पिघलती है तो वो फिर पानी नदी के रूप में बहता है, पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वो फिर कुआं में भी आता रहता है, वो भी बरसात के आधार पर है, बरसात अगर न पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। तो कहते भी है बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ, बच्चे कहते हैं बाबा आपको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ, आश है स्वर्ग श्री कृष्णपुरी में जाने की, विष्णुपुरी का किसको पता नहीं है। विष्णुपुरी में जाना ये इच्छा नहीं रखते, कृष्णपुरी में जाना है, कृष्ण से मिलना है। तो विष्णुपुरी का किसको पता नहीं है, श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहाँ देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा, फिर श्री कृष्ण सब जगह ये क्यों कहते हो, परमात्मा है सब जगह ये कहो ना। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते ये सब उनके ही रूप है। जो चलो परमात्मा के मुरीद है वो क्या कहेंगे, सब ईश्वर के ही रूप है, वो वही ये सारी लीला कर रहा है। भगवान ने अनेक रूप धरे हैं लीला करने के लिए, ये सब भगवान के रूप है, अनेक रूप भगवान, एक ही भगवान। हाँ सब सब कितने रूप धरे हैं लीला करने लिए। तो जैसे मोनो एक्टिंग हो गई ना, एक मोनो एक्टिंग होता है ना, वो एक्टर एक ही है लेकिन कितने पार्ट बजाता है। तो बाबा कहते हैं लोग भी ऐसे ही कहते हैं भगवान के लिए कि भगवान ने अनेक रूप धरे लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, हाँ कैसे वो लीला, भगवान की लीला स्वर्ग कैसे होता है, वहाँ गंध की तो कोई बात ही नहीं होती, यहाँ तो गंध ही गंध है। और फिर यहाँ कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, गंदी गंदे चारों तरफ किचड़ा ही किचड़ा। तो बाबा कहते हैं फिर कहते सब में भगवान है, सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख दुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख हुआ, हाँ दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ले ली, तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है। तुमने तो कहा ना भगवान ने बच्चा दिया, फिर भगवान ने अगर ले लिया तो फिर रोते क्यों, उस जिसने दिया उसने अपनी चीज ले ली, फिर तुम रोने की क्या दरकार। सत्युग में ये रोने आदि का दुख होता नहीं। मोह जीत राजा का दृष्टांत दिखाया है, ये सब है झूठे दृष्टांत। कहते सत्युग में सब मोह जीत है, तो कोई साधु गया उनकी परीक्षा लेने के लिए कि ये मोह जीत है या नहीं, तो कहा तुम्हारा बच्चा मर गया। सब परिवार ने कहा कि हाँ चलो वो आत्मा गई तो इसमें रोने की क्या दरकार है, लेकिन सत्युग में कोई ऐसा मोह जीत राजा नहीं होगा। क्यों बाबा कहते हैं क्यों मोह जीत राजा सत्युग में नहीं होगा, कलयुग में भी नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वहां तो कोई बच्चा मरेगा ही नहीं। बाप बैठे बच्चा मर जाए ये तो हो ही नहीं सकता है। जो बाप को कहे कि तुम्हारा बच्चा मर गया, माँ को कहे तुम्हारा बच्चा मर गया, वहां होगा ही नहीं, ऐसे कोई कहेगा भी नहीं। तो ये कहानी वहां की भी नहीं है और यहाँ की भी नहीं है, यहाँ तो सब मोह के वश होंगे। तो बाबा कहते हैं मोह जीत राजा का दृष्टांत दिखाया है, ये सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है। सत्युग में ऋषि मुनि होते नहीं, कोई ऐसा संत जाएगा साधु जाएगा और बाप को कहेगा कि तुम्हारा बच्चा मर गया, तो सत्युग में ऋषि मुनि होते नहीं। और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती कि कोई जाकर किसको कहेगा तुम्हारा बच्चा मर गया, हाँ तो बाबा कहते हैं और वो रोए नहीं, ऐसे होगा ही नहीं, यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोह जीत राजा हो नहीं सकता है ही नहीं। भगवान वाच यादव कौरव पांडव क्या करत भय, भारत में वो दिखाते यादव पांडव माने कौरव क्या करत भय, क्या क्या कर रहे हैं बताओ, तो फिर एक एक का बता रहे पांडव क्या कर रहे हैं, कौरव क्या कर रहे हैं, यादव क्या कर रहे हैं। तुम्हारा बाप से योग है, बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको ये बोलो, अब क्या पैगाम दो, कोई भी मिले तो उनको ये बोलो कि भगवान कहते हैं माँ में कम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद नहीं करो, ये है केवल एक की याद, उसको क्या कहेंगे अव्यभिचारी याद। यहाँ कोई जल आदि तो चढ़ाना नहीं है, यहाँ कोई पूजा पाठ तो यहाँ होती नहीं है, कि भाई शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे, जल आदि चढ़ाएंगे, या तो ऐसे है नहीं। भक्ति मार्ग में ये धंधा आदि करते हैं, याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो, गुरु अपना लॉकेट दे देता है। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं, तो मूल बात है कि सभी को पैगाम दो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बस यही पैगाम सबको दो। बाबा माना ही भगवान, जब हम बाबा कहते हैं तो हम एक भगवान की बात कर रहे हैं, परमात्मा के लिए कहते हैं। भगवान तो निराकार है, श्री कृष्ण को सब भगवान तो नहीं कहेंगे, सारी दुनिया तो श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहेगी। कृष्ण तो बच्चा है, शिव बाबा इसमें न होता, शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में न होता तो तुम होते क्या, तुम होते क्या, ऐसे बैठते थे क्या, ओम शांति भवन बनता क्या। हाँ, ऐसे इतने बाबा के सेंटर्स होते क्या अगर शिव बाबा ब्रह्मा तन में न आता। शिव बाबा इसमें न होता तो तुम होते क्या। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। ये माता भी है, पिता भी है, कौन, ब्रह्मा बाबा, माँ भी है और फिर पिता भी है, अलौकिक तो पिता है ना, तो ये माता भी है और पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, जब बच्चे पैदा करने हैं, चलो बाप निराकार है पर माँ तो साकार में चाहिए ना, माता तो साकार में चाहिए ना, वो तो है ही पिता। जब परमात्मा कहते हैं तो वो तो है ही परम पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति तुम बच्चों को कभी भी किस, तो ऐसी ऐसी अच्छी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो, धारण करो फिर समझाओ। तो तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा विघ्न है ना, यज्ञ में अपनी पाठशाला खोल दी, फिर कहेंगे हमारा कोई सेंटर से लेना देना नहीं है, हमारा डायरेक्ट शिव बाबा से है। फिर मुरलियां तो मिल जाती है तो वह समझते हैं हमारा किसी से कनेक्शन नहीं है। तो बाबा कहते हैं संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए, अपनी पाठशाला खोली, तो ये क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सेंटर से कोई कनेक्शन नहीं, मधुबन से कोई कनेक्शन नहीं, मुरली तो मिल जाती है, तो इसीलिए बस अपनी गीता पाठशाला खोल दी। बाबा कहते अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो ये तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक भी नहीं है, वो कैसे लायक होगा पाठशाला खोलने के, शिव बाबा से तो कनेक्शन ही नहीं रखा, शिव बाबा के बच्चों से कोई कनेक्शन नहीं रखा और समझता है मैं गीता पाठशाला अपनी खोल दूंगा। तो बाबा कहते हैं खोलने के लायक भी नहीं है, वो देह अभिमान तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और धीरे 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 हाँ वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाबा से शक्ति तो मिली नहीं, बीज से तो शक्ति ली नहीं। तो अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है, रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है, वो दे अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है तो वही याद रहेगी, कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे, बुद्धि का ताला ही बंद हो जाएगा, तो कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते हैं वो तीखे चले जाते हैं, ऐसे भी होता है। हाँ, वो ज्ञान दिया किसको दिया, वो जिसने दिया वो तो वहीं का वहीं, और जिसको दिया वो तीखा चला गया, खुद गिर पड़ते हैं जिन्होंने दिया। खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है, पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाए। हाँ देखो ये भी है, ऐसे ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है, बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ, बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अंडरलाइन है, बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, दुश्मनी बनाना भी दे अभिमान है, दुश्मनी बनाना भी दे अभिमान है, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, पावन बनना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है। कितनी बातें आ गई, क्या क्या करना है। दूसरा, प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है, तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले रास युक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले रास युक्त भव। न्यारा कैसे रहना है, प्यारा कैसे रहना है और किस समय रहना है, ये सब राज है। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वो सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले रास युक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती है। काजी बना जज, अगर सबसे राजी है, सब उनसे राजी है, तो लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं है, जो कोर्ट में जाए और केस करे और फिर जज निर्णय करे, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे राजी है और सब उनसे राजी है। तो ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप कहते ना मियां बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी, काजी माना जज, जज की जरूरत ही नहीं है, दोनों राजी है तो डाइवोर्स क्यों देंगे, डाइवोर्स देना है तब जज की जरूरत पड़ती है। तो अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप ही कर लेते हैं, इसलिए उन्हें किसी को काजी और वकील या काजी वकील में वकील और जज ये जज बनाने की भी जरूरत नहीं है, न वकील बनाने की जरूरत है न जज बनाने की जरूरत है किसको, क्योंकि राजी है सबसे। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती है वे दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से जो दुआएं मिलती है उस से वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। दादी जी हमेशा कहती थी 80% दुआएं, चलो 20% दवा, लेकिन 80% दुआएं काम करती है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं चलता है माना मर गया, तो जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार है पवित्रता। आत्मा और परमात्मा के मिलन का भी आधार है पवित्र बुद्धि। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार भी पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को वरदान रूप में धारण करो। ये भगवान का वरदान है मुझे पवित्रता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बीके कॉलोनी वाले भाई बहनों को विशेष गीता बहन निमंत्रण दे रही है। अब सभी आबू निवासी भाई बहने फल विभाग में गीता बहन से मिले। आबू निवासी, सभी आबू निवासी भाई बहने अभी योग के बाद गीता बहन से फल विभाग में मिले।